यह श्री वीरसेन आचार्य रचित देवला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबलि आचार्य, जिन्होंने श्री दर्शन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। ये 15वीं पुस्तक जो शेष अनुयोग द्वार है, 18 अनुयोग द्वार बाकी है, उसमें से अभी हमारा 9वां उपक्रम अनुयोग द्वार चल रहा है और हम पृष्ठ संख्या 119 पर आ गए। उपक्रम में बंधने के दूसरे समय से लेकर जो सप्ताह में कर्म पड़े हैं, उनमें क्या क्या अवस्थाएं होती है उसका वर्णन चल रहा है। उसमें बंधन उपक्रमण के बाद उदीर्णा उपक्रम की बात चल रही है। उदीर्णा में भी मूल प्रकृति उदीर्णा और उत्तर प्रकृति उदीर्णा की बात देखी हमने, उसमें उत्कृष्ट जगन ने भी देखा था, और अभी उसका काल कितना लगता है उसकी बात चल रही है। एक जीव की अपेक्षा काल, यानी उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा लगातार होती रहे तो कितने काल तक होगी, जघन्य होगी तो कितने काल तक, आदि इसकी बातें इसमें चलेगी। कल हमने पढ़ा था, देखो उसको देख के फिर आगे बढ़ेंगे। एक जीव की अपेक्षा काल सेकंड लाइन में हमने वो पैराग्राफ पूरा पढ़ा था, फिर दोबारा पढ़कर आगे बढ़ेंगे। तो 5 ज्ञानावरणी की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा कितने काल तक होती है, तो जघन्य से एक समय और लगातार अधिक से अधिक अंतर्मूर्त काल तक होती है, बाद में उत्कृष्ट नहीं होगी, उसमें से कुछ कम हो जाएगी। इनकी अनुत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा का काल जघन्य से अंतर्मूर्त, जो उत्कृष्ट नहीं है वो अनुत्कृष्ट है, तो जघन्य भी अंतर्मूर्त होगा और उत्कृष्ट से असंख्यात पुद्गल परिवर्तन स्वरूप अनंत काल। जैसे ज्ञानावरणी की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा के काल का कथन किया गया है, वैसे सब ध्रुवोदयी प्रकृतियों की भी उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा के काल का कथन करना चाहिए। पांच दर्शनावरणी की यानी निद्राओं की उत्कृष्ट व अनुत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से अंतर्मूर्त है, जैसे हमने वहां देखा था ज्ञानावरण में, वैसे यहां भी समझ। विशेष इतना है कि इनकी उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा का काल एक आवली प्रमाण है, क्योंकि उत्कृष्ट स्थिति बंध के काल में निद्रा आदि 5 दर्शनावरणी प्रकृतियों का उदय संभव नहीं है, यानी उत्कृष्ट स्थिति बंध होता रहा और उसके बाद इसका उदय होगा तभी उदीर्णा होगी, तो उसके बंधने के काल में इसका उदय नहीं है। हाँ, उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट उदीर्णा का काल जघन्य से एक समय बताए और उत्कर्ष से अंतर्मूर्त है, और उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा की बात है एक आवली प्रमाण है। यानी एक समय वाली बात यहां नहीं बताई, ऐसा कहना चाहते ना। वैसे सातावेदनी की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से एक आवली मात्र है, उसकी अनुत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से 6 मास है। जिस प्रकार साता की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा का कथन किया है, उसी प्रकार हास्य और रति प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा के काल का कथन करना चाहिए। उदीर्णा लगातार कब तक होती है उसकी बात नहीं चल रही, उत्कृष्ट है या अनुत्कृष्ट है उसकी बात चल रही। असाता वेविने की उत्कृष्ट स्थिति की उदीर्णा का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से अंतर्मूर्त है, और उसकी अनुत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से साधिक 33 सागरोपम है। यानी उसमें आने के पहले से शुरू है या बाद में चलती रहे तो साधिक खराब। जैसे असाता वेदिनी की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा के काल की प्ररूपणा की गई है, वैसे ही अरति और शोक की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा के काल की भी प्ररूपणा करना चाहिए। ये बात तो हमने कल पढ़ी थी दोबारा। छह महीने के वो तो उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट की बात चल रही है। असाता असाता परिवर्तन होता है ना उसमें, साता असाता का होता रहता है। अब 16 कषाय भय और जुगुप्सा के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितियों की उदीर्णा काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से अंतर्मूर्त है। सम्यक तो प्रकृति की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा का काल जघन्य व उत्कर्ष से एक समय मात्र है। उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा सम्यक प्रकृति की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा हमने कितनी देखी थी उसकी 70 पड़ा पड़ी में। उसका काल एक समय बताया मगर उसकी होती कितनी है कल देखा था ना हमने, जरा देखते हैं पीछे। बारह कषाय उसके पहले हुए था कभी सुनने की मिथ्या तो जघन्य 112 पर है। पहले उत्कृष्ट बताया था ना उन्होंने, कैसे मिथ्यात्व में से हमने देखा था वो संक्रमण होकर उस पर होता है। यानी 70 कोड़ा कोड़ी के बांध का एक अंतर मुहूर्त में प्रतिभग्न हुआ, वैसे बात हमने पढ़ी थी उसको। देखो 102 पेज पर है, 112 पर वो जघन्य की है, हमें उत्कृष्ट की चाहिए। चौथी लाइन में 102 पेज पर देखो सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा अंतर्मूर्तकम 70 कोड़ाकोड़ी सागरोपम प्रमाण है। यानी मिथ्यात्व 70 कोड़ाकोड़ी का बांधा एक अंतर्मूर्त में प्रतिभग्न होकर सम्यक को प्राप्त किया और वो मिथ्यात्व के परमाणु को सम्यक प्रकृति रूप परिणाम है। तो पहले समय में उसकी उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा है, बाद में एक समय कम हो जाएगा ना स्थिति में, निशय के गल जाएगा, इसलिए वो जघन्य और उत्कृष्ट भी उत्कर्ष से भी एक समय कहा उसको। अब आगे 120 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं उसकी अनुत्कृष्ट, उसकी यानी किसकी चल रही है सम्यक प्रकृति की। एक समय के लिए वो उत्कृष्ट उसका काल, यानी उत्कृष्ट जो उदीर्णा है वो एक समय के लिए है, उसके बाद एक निषेक घट गया तो अभी उसका अनुत्कृष्ट हो गया, क्योंकि बाद में कोई बंधने का सवाल नहीं है ना, इसलिए उसको जितनी है उतनी रहेगी। उसकी अनुत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से कुछ कम 66 सागरोपम। हमने देखा था वेदक सम्यक्त्व का काल 66 सागरोपम होता है, ये अनुत्कृष्ट है तो कुछ कम कर दिया उसमें से। उत्कृष्ट एक समय निकल गया और बाद में अनुत्कृष्ट तो कुछ कम 66 सागरोपम। सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्ण का काल जघन्य से वे उत्कर्ष से एक समय मात्र है। यहां भी ऐसे ही समझना, ये तीन प्रकृति हो जाती है और बाद में वो तीसरे में आता है तब उत्कर्ष से एक समय के लिए उसकी अनुत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा का कारण जघन्य वो उत्कर्ष से अंतर्मुहूर्त है। ऐसा क्यों कहा है? तीसरे गुणस्थान का काल ही अंतर्मुहूर्त है और वहाँ सम्यक प्रकृति के उदय के साथ वेदक सम्यक में रहने का काल 66 सागर का, इसलिए उसमें तो उतना काल लिया कुछ कम में, क्योंकि कुछ कम के बाद वो तो शायक होगा या अन्य कहीं चला जाएगा, इसलिए उसको लिया। नपुसक वेद की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से अंतर्मुहूर्त है और उसकी अनुत्कृष्ट स्थिति की उदीर्णा का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से असंख्यात पुद्गल स हो गया, पुद्सल हुआ, पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। ये असंख्यात पुद्गल परिवर्तन काल किसका होता है याद है? हाँ, एक केंद्रीय में रहने का उत्कृष्ट काल। स्त्री वेद की उत्कृष्ट स्थिति की उदीर्णा का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से एक आवली प्रमाण है, यानी उत्कृष्ट उदीर्णा की बात, स्थिति की बात चल रही है। उसकी अनुत्कृष्ट स्थिति की उदीर्णा का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से पल्लवम शतपृथक्व प्रमाण है। ये किसका काल है पल्लवम शतपृथक्व? स्त्री में रहने का उत्कृष्ट काल, उसमें मनुष्यनी, तिर्यंचनी और देवी सब कुछ आ गए। स्त्री वेद का उत्कृष्ट काल ये है, इसलिए कुछ कम ले लिया उसमें। पुरुष वेद की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से एक आवली मात्र है और उसकी अनुत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से सागरोपम शतपृथक्व प्रमाण है। पुरुष वेद का अधिक से अधिक काल सागरोपम शतपृथक्व है और स्त्री वेद का पल्लवम शतपृथक्व है। चार आयु कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा का काल जघन्य से व उत्कर्ष से एक समय मात्र है। इसका अर्थ समझ में आता है? एक समय के बाद एक निषेक गल गया, अब वो उत्कृष्ट स्थिति यानी निषेक मैक्सिमम नहीं रहे, उसमें से एक निषेक घट गया तो अनुत्कृष्ट हो गया। नारकायु और देवायु की अनुत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा का काल जघन्य कहा एक अवधि से कम 10,000 वर्ष। कम से कम स्थिति उदीर्णा का काल कितना है? जितनी मिनिमम आयु उसकी बात है। और उत्कर्षता एक समय अधिक आवली से ही 33 सागर। एक आवली से कम 10,000 वर्ष अनुत्कृष्ट लिया ना, एक समय के लिए वो उसमें चला गया उत्कृष्ट, एक समय के लिए वो पहला समय उसमें से माइनस कर गया। तिर्यंच आयु की अनुत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा का काल जघन्य से आवलिकम शुद्रभवग्रहण, शुद्रभवग्रहण के एक आवली काल के पहले वो उदीर्णा रुक जाती है, इसलिए आवलिकम शुद्रभवग्रहण। और उत्कर्ष से एक समय अधिक आवली से हीन 3 पल्लव। ये मनुष्य और तिर्यंच उनकी उत्कृष्ट आयु होने का देखे ना, 3 पल्लव। मनुष्यायु की अनुत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से एक समय अधिक आवली से हीन 3 पल्लवों प्रमाण है। अनुत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा, अनुत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा किसको कहना है? तीन पल्ले से कैसे ज्यादा होगी? लगातार उदीर्ण होनी चाहिए। मान लेते तिर्यंचो में ही वो भ्रमण करता रहे, हर बार मरण के पहले एक आवली समय, आवली काल पहले वो उदीर्ण रुक जाते उस अपेक्षा से। वैसा वेद में नहीं है, वेद में भव पलट गया तो भी वेद का उदय 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 चल ही रहा है तो उसकी उदीर्णा भी चल रही है। आपका क्या? अनुत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा का काल एक समय जगन्य से एक समय, जगन्य से एक समय कब होगा? जब आवली काल शेष रहता है। एक समय कम, एक समय अधिक आवली से ही तीन पल्लू कुंड प्रमाण। क्या कहते हैं? देखो तीर्यंच में कितना लिया, तीर्यंच आयु की अनुत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा, जगन्य से आवलिकम क्षुद्र भवग्रहण, और उत्कर्ष से एक समय अधिक आवली से ही तीन पल्लव। और मनुष्य की अनुत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा का काल जगन्य से एक समय, ऐसा तीर्यंच में क्यों नहीं लिया एक समय, ऐसा कहते हो? और उत्कर्ष से एक समय यानी कावली से ही तीन पल्ले ये बराबर है, कसे ने तीन ही पल्ले में समय अपूर्णा ने। हाँ ऊपर वैसे ही लिखा है, मनुष्य उस अनुपस्थित ठिधि उदीर्णा कालो जवन्य ने एक समय। जगन्य स्थिति उदीर्णा का काल एक समय होता है, वहां भी जगन्य से आवलिकम क्षुद्र भवग्रहण कहना चाहिए था ना उसका, ऐसा क्यों लिखा पता नहीं। ऊपर भी ऐसा ही लिखा है, अनुकसन जगन्य कुत्ता भवगण मामूलियों नाम उपकसन तीन ही करी जाओ। आगे बढ़ते हैं, तिरंच जैसे होना चाहिए था। अब नरक गति की बात करते हैं, ये चार आयु की हो गई यहाँ पर। क्योंकि देखो नारकायु देवायु में भी जो जगन्य आयु है उसमें एक अवली कम कर दी है ना अनुत्कृष्ट के लिए, वैसे यहाँ भी मनुष्य आयु जो जगन्य है और शिक्षुद्र भोग्रह उसमें से एक अवली कम करनी चाहिए थी। यानी जगन्य से एक समय घटित नहीं होता है, जैसे तीर्यंज में लिया था आवलिकम शुद्र भवग्रहण
एक समय अधिक और उत्कर्ष से एक समय
नहीं, आवलिकम शुद्र भवग्रहण ही चाहिए था उसको भी। से लिख के रखना है, करेक्शन के लिए नहीं, मगर क्वेश्चन मार्क अनुत्कृष्ट की बात नहीं है, जगन्य और उत्कृष्ट ही बताया, और जैसे तिर्यंच में वैसे मनुष्य में है। देखो देवों में भी अनुत्कृष्ट कैसे, देवों की मिनिमम आयु में से एक आवली कम की थी, नरकायु मिनिमम आयु 10,000 वर्ष उसमें आवली कम की थी, तिर्यंच में भी जगन्य आयु में से एक आवली कम की थी, और मनुष्य में भी आवली में से एक क्षुद्र भवन में से एक आवली कम चाहिए था, अन्यथा एक समय प्लस आवली कहते हैं। यहाँ एक आवली क्यों कहा?
ये तो अनुपुष्ट की बात है ना,
अनुत्कृष्ट के लिए, क्योंकि पहला समय वो होता है तो उस आयु के जो पहले समय में उत्कृष्ट हो जाती है ना उस आयु की अनुत्कृष्ट उत्कृष्ट के लिए वो पहला समय लेना मैक्सिमम आयु का पहला समय और ये बाकी है वो अनुत्कृष्ट के लिए लेने। अब 121 पेज पर आते हैं। नरक गति नाम कर्म की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्ण कितने काल होती है? जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से आवली काल मात्र होती है। उसकी अनुत्कृष्ट स्थिति की उदीर्ण उत्कृष्ट स्थिति बांध क्या है और नरक गति में उसका उदय चालू हो गया है, आवली काल तक उत्कृष्ट होगी और बाद में उसकी अनुत्कृष्ट हो जाएगी। उत्कृष्ट जो स्थिति बांध के आया है उतनी उसके आवली काल तक उसकी रहेगी उतनी। देखो उत्कृष्ट किसके होती है हमने देखते थे, हमने देखा था ना 102 पेज के बाद गर्भगति वगैरह वगैरह। दो अवलियों से हीन बीस कोड़ाकोड़ी सागर रकम प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति उदीर्ण वो लगातार कितने काल तक होती है? उसका स्वामित्व हम देखते हैं। देखो नरगति की उत्कृष्ट स्थिति का उदीरक पेज नंबर 106 से 121 से ना देखो 106 पृष्ठ पर तीसरी लाइन उसका स्वामी कौन है फिर हमें उसकी लगातार क्यों होती है वो पता चलेगा। देखो नरक गति नाम कर्म की उत्कृष्ट स्थिति का उदीरक कौन होता है? जो उसकी उत्कृष्ट स्थिति को बांधकर नरक गति में उत्पन्न हुआ है वह जघन्य से पांचवी उत्कर्ष से सातवीं पृथ्वी में पांचवी से सातवीं पृथ्वी तक के जीवों की तद्भवस्थ होने के प्रथम समय द्वितीय समय तृतीय समय चतुर्थ समय इस प्रकार तद्भवस्थ होने के आवली मात्र काल तक नरक गति की उत्कृष्ट स्थिति का उदीरक होता है, क्योंकि उसने उतनी उत्कृष्ट स्थिति बांध के आया हुआ वो एक एक की बंधावली आवली काल तक लगातार उसने बांधी है तो हर एक की अपनी बंधावली समाप्त होने के बाद वो लगातार एक आवली काल तक उसकी पर उत्कृष्ट स्थिति उसने लगातार बांधी है ना एक एक समय बांधी है। मान लेते उसका एक निशय गल गया परंतु नेक्स्ट समय में भी उत्कृष्ट बांधी थी तो उत्कृष्ट बांधने का काल भी लगातार था तो उसके उदय का काल भी होगा ना लगातार अपने अपने आवली बीतने के बाद उसका उदय चालू हो गया है इस तरह से उसको ले सकते हैं। इसलिए ना आवली मात्र काल तक यही पेज
लास्ट लाइन से
मनुष्य गति की है। अभी हमारा जो प्रश्न था मनुष्य आयु का था ये 121 पृष्ठ पर आते हैं। देखो इसके लिए हमने 106 पृष्ठ का रेफरेंस देखा था उत्कृष्ट स्थिति उदीर्ण इन्हें आवली काल तक उसकी हो गई उसकी अनुत्कृष्ट स्थिति की उदीर्ण कितने काल तक होती है? जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से 33 सागरोपम काल तक होती है। यानी जिसने वो ज्यादा नहीं बांधी होगी उसकी वो अनुत्कृष्ट स्थिति उदीर्ण हो जाएगी उसकी जो उत्कृष्ट बांध कर आया है। तिर्यंच गति नाम कर्म की उत्कृष्ट स्थिति की उदीर्ण कितने काल तक होती है? वह जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से एक आवली तक होती है। उसकी अनुत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से असंख्यात पुद्गल परिवर्तन मात्र है। ये भी एक इंद्रियों की उत्कृष्ट स्थिति है ना। मनुष्य गति नाम कर्म की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा कितने काल होती है? जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से एक आवली काल तक होती है। उसकी अनुत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा कितने काल तक होती है? जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से पूर्व कोटि पृथक्त्व से अधिक तीन पल्यपन प्रमाण काल तक होती है। हमने देखी थी ना, ये तो मनुष्य की जो स्थिति कहने में आती है। आयु में तो आवली काल का गैप पड़ता है, इसलिए आयु में हमने लगातार अनेक भव नहीं लिए, परंतु मनुष्य गति का उदय चल रहा है तो उसकी उदीर्णा भी होती रहती है। तो लगातार मनुष्य में रहने का काल कितना है? तो पूर्व कोटि के कुछ भव करके, यानी पूर्व कोटि पृथक्व से अधिक तीन पल्यपन, अंतिम भव उसका वो भूमि वाला लेना। देवगति नाम कर्म की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा कितने काल तक होती है? जघन्य से व उत्कर्ष से एक समय तक होती है। यहाँ अवली नहीं लगाए हूँ, उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा, और अनुत्कृष्ट स्थिति की उदीर्णा जघन्य से एक समय कम 10,000 वर्ष और उत्कर्ष से 33 अग्रोपम काल तक होती है। नरक गति मनुष्य तीन और मनुष्य में एक एक आवली तक बताया था। देवगति में अलग है, जगन्य और उत्कर्ष भी एक ही समय तक होती है। अब जाति नाम कर्म, एक इंद्रिय जाति नाम कर्म की प्ररूपना तिर्यंच गति के समान है। द्विंद्रिय तीनिंद्रिय और चतुरिंद्रिय जाति नाम कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा का काल जघन्य व उत्कर्ष से एक समय मात्र है। उनकी अनुत्कृष्ट स्थिति की उदीर्णा का काल जघन्य से एक समय कम क्षुद्र भव ग्रहण और उत्कर्ष से संख्यात 1,000 वर्ष है। उसमें रहने का जो काल है उसको लिया उसमें। पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से अंतर्मूर्त है, और उसकी अनुत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा का काल जघन्य से क्षुद्र भव ग्रहण अथवा अंतर्मूर्त, वो भी अंतर्मूर्त ही होता है ना, इसलिए अथवा लिखा, तथा उत्कर्ष से पूर्व कोटि पृथक्त्व से अधिक 1,000 सागरोपम है। पंचेंद्रिय जाति है, कोई तिरेंच की बात नहीं चल रही आपके लिए, तो पंचेंद्रिय जाति यानी चारों ही गति में पंचेंद्रिय रूप से रहने का काल। इसे द्विंद्रिय से हमने देखा ना 2,000 सागरों, तो अकेले पंचेंद्रियों में लगातार रहे तो 1,000 सागरों में पूर्व कोटि पृथक अधिक करना। औदारिक शरीर नाम कर्म की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से एक आवली मात्र है। ऊपर दिख रहा है एक आवली मात्र है। उसकी अनुत्कृष्ट स्थिति की उदीर्णा का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से अंगुल के असंख्यात वे भाग मात्र है। औदारिक शरीर नाम कर्म की बोलिए क्यों नहीं होता? हाँ, तो ये अंगुल का असंख्यात भाग किसके लिए बताया, किसका अधिक से अधिक काल है ये? हाँ, आहारक पने रहने से अधिक काल। नहीं समझे? देखो, विग्रह गति में जब कारमान का योग होता है, एक मोड़ से जाता है, तो कारमान का योग में अनाहारक होता है। अनाहारक अवस्था में औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय नहीं रहता, क्योंकि औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय हो तो औदारिक के परमाणु ग्रहण करता है तो आहारक ही हो जाता है। तो अनाहारक बीच में न रहते हुए लगातार आहारक बने रहने का काल अंगुल के असंख्यात भाग मात्र है। अंगुल के असंख्यात भाग को दूसरे, ये तो प्रदेशों में बताए ना, اس کو کال میں بتانا نہیں. اسنکھیات کلپ کال نہیں سمجھے. دیکھو انگول کا اسنکھیات کا بھاگ جو ہے یہ کال کا ماپ پردیشوں میں بتایا, کھیتر کی اپیکشا کال کو گنایا. انگول میں جتنے انگول کے اسنکھیات بھاگ میں جتنے پردیش ہے اتنے سمے, یدی ہم کو اس کو کال میں بتانا ہے تو ایک اوسرپنی اتسرپنی مل کر بیس کوڑا کوڑی ساگر کا ایک کلپ کال ہوتا ہے. تو انگول کا اسنکھیات بھاگ کہنے کے بدلے اگر ہم کلپ کالوں میں اس کو ڈسکرائب کریں تو ہمیں اسنکھیات کلپ کال کہنا پڑے. تو یہ کون سا کال ہے؟ تو لگاتار آہارک بنے رہنے کا کال, یعنی اپنی بھاشا میں آہارک کا اتکرشٹ کال کہہ سکتے ہیں. آہارک بنے کا اتکرشٹ کال. یعنی اس نام کرم کا ادے چل رہا ہے لگاتار. वैक्रिक शरीर नाम कर्म की उत्कृष्ट स्थिति की उदीर्णा का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से अंतर्मुख है. हमने देखा था नंदरक गति में वैसे ही उसके साथ वैक्रिक शरीर नाम कर्म का भी उदय लगाता है उत्कृष्ट का. उसकी अनुत्कृष्ट स्थिति की उदीर्णा का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से साधिक 33 सागरोपम प्रमाण है. हाँ विक्रिया वाला लिए असाधिक है. आहारक शरीर ये ख्याल में है ना, वैक्रिक शरीर नाम कर्म की उदीर्णा. देखो उसमें तो लगातार अनेक भव नहीं होते वैक्रिक शरीर के उदय के साथ. जैसे मनुष्य में तिर्यंचों में आहार ये औदारिक शरीर का उदय चलता रहे तो वो तो लगातार हो सकता है, परंतु वैकरिक शरीर का तो लगातार नहीं हो सकता. आहारक शरीर नाम कर्म की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा का काल जघन्य व उत्कर्ष से एक समय है. उसकी अनुत्कृष्ट स्थिति की उदीर्णा का काल जघन्य व उत्कर्ष से अंतर्मुक्त है. आहारक शरीर नाम कर्म का उदय वो जब आहारक शरीर बनाता है तभी उस काल में ना शरीर और अंगोपांग. अभी अंगोपांग की बात करें, औदारिक शरीर अंगोपांग नाम कर्म की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से एक आवड़ी मात्र है. जैसे औदारिक शरीर में अभी देखा वैसे औदारिक शरीर अंगोपांग में भी है, दोनों का उदय एक साथ चलता है. उसकी अनुत्कृष्ट स्थिति की उदीर्णा का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से साधिक 3 पल्लोपम प्रमाण है. अभी जरा कंपेयर कर सकते. ऊपर हमने अभी औदारिक शरीर का उत्कृष्ट काल अनुत्कृष्ट स्थिति के उदीर्णा का कितना देखा था, अंगुल के असंख्या के भाग, और अंगोपांग का कितना देख रहे हैं यहाँ पर, साधिक 3 पल्लोपम. ऐसा क्यों? वही मैं पूछ रही हूँ आपको. हाँ शरीर पर्याप्ति पूरी होने पर नहीं, शरीर और अंगोपांग का एक साथ चालू हो जाता है. शरीर नाम कर्म का उदय पहले ही समय से है. हाँ बहुत अच्छा. एक इंद्रियों में अंगोपांग नाम कर्म का उदय नहीं है, तो एक इंद्रियों में आहारक बनने का काल उत्कृष्ट वो अंगुल का असंख्यात भाग लिया था. अब यहाँ तो द्विंद्रिय से लेकर अंगोपांग है ना, तो अंगोपांग किसके हो गए, द्विंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक, और वो भी औदारिक बने. तो द्विंद्रिय से लेकर तिर्यंच पंचेंद्रिय और मनुष्य भी उसमें लेना, तो उसके लिए उसमें क्या लिया, देखो साधिक 3 पल्लों को. ये जो बाकी जो भाव हो गए लगातार आहारक बने रहते हुए द्विंद्रिय आदि पंचेंद्रिय तक के मनुष्य तिर्यंचों में जो रहने का काल है उसका, तो वो साधिक में ले लिया. तो कितने भी भाव हो जाएंगे उसमें रुजु गति से जाना चाहिए, क्योंकि अंगोपांग का उदय बना रहना चाहिए। बीच में कारमान का योग आ गया, अनाहारक हो गया, तो अंगोपांग का उदय उस काल में नहीं होता। विग्रह गति में जो मोड़ वाली गति है उसमें उसका उदय नहीं होता। हाँ, बड़ा होगा शादी के। वैक्रियक और आहारक शरीर अंगोपांग नाम कर्मों की उत्कृष्ट व अनुत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा के काल की प्ररूपना वैक्रियक व आहारक शरीर नाम कर्मों के समान है। वहां तो जैसे वैक्रिक शरीर का उदय वैसे वैक्रिक अंगोपांग का, क्योंकि वो लगातार अनेक भावों में उसका उदय नहीं होता है। औदारिक अंगोपांग का तो हो सकता है, द्विंद्रिय से दूसरी बार तीनिंद्रिय पंचेंद्रिय कहीं भी गया और उसके रुजु गति से गया तो अंगोपांग का उदय तो चलता है। पांच बंधन और संघात नाम कर्मों की उत्कृष्ट व अनुत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा के काल की प्ररूपना पांच शरीरों के समान है। शरीर बंधन और संघात उसका उदय एक साथ चलता रहता है। तेजस कर्मण की बात नहीं किए सके थे आप, तो तेजस कर्मण तो लगातार चलता ही रहता ना उसका। उत्कृष्ट भले कभी हो परंतु अनुत्कृष्ट तो चलता ही रहेगा हमेशा। नहीं समझे, उसकी जघन्य जो है वो तो सहयोगी के अंतिम समय में हो जाएगी, उदीर्ण वहां तक एक समय के, बाकी अनुत्कृष्ट और उत्कृष्ट कभी कभी हो जाए बीच में। पांच संस्थान नाम कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से एक आवली मात्र है। हमने उसका स्वामित्व कैसा होता है वो देखा था, अन्य संस्थान में से वो गया फिर उसमें किसी एक का उदय आता है। देखो देखो, इसका स्वामी हमने देखा था, वो कौन जीव करता है उसकी बात हमने देखी। ये पेज नंबर 108 के आसपास होगा, हाँ 8 पर ही है। देखो पांच संस्थानों में से मिला 108 पृष्ठ पर, पांच संस्थानों में से जिसकी इसकी विवक्षा हो उस संस्थान का वेदज्ञ, यानी उसकी उसका उदय चाहिए तभी उसके उदीर्णा की बात करेंगे। उत्कृष्ट स्थिति को करके आवली मात्र काल को बिताकर उसका उदीरक होता, यानी अन्य ये संस्थान में से उसमें आ गया और उसका जिसका उदय है उसकी बात वहां ले ली। अब यहाँ आते हम अपने पेज पर 122 नंबर पर। उत्कर्ष से आवली मात्र है उनमें, उत्कृष्ट स्थिति उत्कृष्ट की बात,
एक आवली तक वो जो स्थिति वाला बनता है, क्योंकि संस्थान में ऐसा है कि ऑप्शनल है।
हाँ ऑप्शनल है बंधन जो है, परंतु उसमें उसमें आया है ना, अभी जन्म लिया उसका वेदक है, वो तो बदलने वाला नहीं है। उदय जो है वो उस भाव के लिए वही संस्थान चलेगा, संस्थान का उदय तो नहीं बदलेगा। नहीं मगर उसने उत्कृष्ट स्थिति लगातार बांधी है तो लगातार उसका उदय भी चलेगा ना उतना। उनमें समचतुर्थ संस्थान की अनुत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से साधिक 163 सागरोपम प्रमाण। कैसा घटित होगा, देव मनुष्य, हाँ उसमें क्या है,
देव मनुष्य
नारकी में नहीं, नारकी में तो मुंडक संस्थान रहेगा, तिरियंचो में तो होगा ना क्या, नहीं होगा समय चतुर संस्थान, पंचेंद्रियों में सहनन की बात नहीं चल रही, संस्थान की बात चल रही है। हो सकता है शेष चार संस्थानों की अनुत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा का कारण जगन्य से एक समय और उत्कर्ष से पूर्व कोटि पृथक का प्रमाण है। देखो समय चतुर्थ छोड़कर शेष चार संस्थान लिए, पूर्व कोटि पृथक यानी वो पल्लकुम वाला नहीं लेना है, पल्लकुम में समय चतुर्थ संस्थान हो जाएगा भूभूमि वाले, इसलिए उसको छोड़कर लिए। कुंडक संस्थान की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से अंतर मुहूर्त मात्र है। उसकी अनुत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से अंगुल के असंख्यात भाग मात्र है। ये भी कैसा लिया? रुजुगति से। क्यों? विग्रह गति में संस्थान का उदय नहीं है, तो किसका उदय है? अनुपूर्वी का। हाँ, ये जो नए भव का जो संस्थान है वो वहां जाने पर उसका उदय चल रहा है। हमने देखा ना अनुपूर्वी से पूर्व भव का ही उसका आकार कायम रहता है। छह सहननों की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से एक अवली मात्र है। इनमें वज्र ऋषभ वज्र नाराज सहनन की अनुत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्षता पूर्व कोटि पृथक्त्व से अधिक तीन पल्लकों मात्र है। देखो भूभूमि में तो वज्र ऋषभ नाराज सहनन ही होता ही लगा उसको, और उसके पहले वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाले पूर्व कोटि पृथक्त्व के भोग हो जाएंगे उसके। देवों को क्यों नहीं लिया इसमें? सहन नहीं होता है, मनुष्य तीर्यंच में ही होता है। देखो क्या कहा, अनुत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा का काल जघन्य से एक समय, क्योंकि वो अनुत्कृष्ट से उत्कृष्ट भी हो जावे तो मिनिमम एक समय, फिर बीच में उत्कृष्ट करके फिर अनुत्कृष्ट हो जावे, ऐसा भी हो सकता है ना। हाँ, वज्र ऋषभ नाराज सहन नहीं होता। और शेष पांच सहननों की अनुत्कृष्ट स्थिति उदीर्ण का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से पूर्व कोटि पृथक का प्रमाण है। यहाँ भी वही रूल ले लिया, क्योंकि पांच सहनन में सहनन जो है वो किसमें किसमें होता है? देव में नहीं है, नारकी में नहीं है, आरक में नहीं है, कहाँ होता है? एकेंद्रीय में है कि नहीं? नहीं है। तो द्विंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीवों को होता है, और इसका भी उदय विग्रह गति में होता है कि नहीं होता? सहनन का उदय कब होता है? ये पहले समय से होता है। हाँ, संस्थान है, सहनन है, संस्थान का पहले समय से होता है, संस्थान का पहले समय से ही होता है। सहनन और अंग देखो हम देखते हैं ना, एक इंद्रियों में पहले विग्रह गति में से आया 21 का उदय था, और वहां जाने पर 24 का होता है, यानी अनुपूर्वी का बंद होता है, और वहां कोई जो प्रत्यक्ष शरीर या साधारण शरीर है उसका शुरू हो जाता है, और फिर उसके जो संस्थान का उदय चालू हो जाता है, यानी उसमें चार ऐड होते हैं एक इंद्रियों के लिए, और जो मनुष्य हो गए तो उसके और दो ऐड होते हैं, संस्थान और सहनन भी ऐड होता है उसके। निकाल के देखना है क्या? छब्बीस होता है मनुष्य, देवों में 25 होते हैं और मनुष्य तिरंजों में 26 होते हैं, क्योंकि उसमें सहनन एक एक्स्ट्रा है। पूर्वी नाम कर्मों की उत्कृष्ट व अनुत्कृष्ट स्थिति उदीर्णाओं का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से दो समय है। विशेष इतना है कि मनुष्यानुपूर्वी और देवानुपूर्वी की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्ण का काल जघन्य व उत्कर्ष से एक समय है। तिर्यक प्रायज्ञानपूर्वी नाम कर्म की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्ण का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से दो समय है और उसकी अनुत्कृष्ट स्थिति उदीर्ण कर्म मनुष्यानुपूर्वी और देवानुपूर्वी की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्ण का काल जघन्य से
एक समय का
मनुष्य में आने के लिए तीन मोड नहीं लगे, एक इंद्रिय से एक इंद्रिय वो भी सूक्ष्म में होता है, वो भी उसके लिए तीन समय लगे। नरक अत्यानुपूर्वी लिया नहीं यहाँ पर, तीन ही अनुपूर्वी क्यों लिए, तिन्नम अनुपूर्वी नाम अनुपूर्वी को कहाँ छोड़ा, स्वामित्व वाला लेना कितना है था 108 कुछ था ना, वहां इतना ही लिखा था नरक गत्यानुपूर्वी की प्ररूपना नरक गति के समान है, देव गति के समान है, वो गति के समान ही इतना ही होना नहीं लिखा। तो उसका तो हमने देखा था उत्कृष्ट स्थिति को बांध कर वहां जो उत्पन्न हुआ है उसकी बात की थी। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। देखो तिर्यक गत्यानुपूर्वी में तीन समय लिए उत्कर्ष से, उपघात परघात उच्छ्वास उद्योत अप्रशस्त विहार गति त्रस प्रत्येक शरीर दुर्भग अनादेय और उस पर नाम कर्मों की तथा नीच गोत्र की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्ण का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से अंतर्मुहूर्त है। उनकी अनुत्कृष्ट स्थिति उदीर्ण काल जघन्य से एक समय क्योंकि इनमें दुर्भग अनादेय व नीच गोत्र को छोड़कर शेष प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति की उदीर्णा करके तत्पश्चात उनकी अनुत्कृष्ट स्थिति की एक समय उदीर्णा करके काल को प्राप्त होकर, काल को यानी मरण करके ये प्राप्त करना प्राप्त हुआ प्राप्त होकर विग्रह को प्राप्त हुए जीव के उनकी अनुत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा का उपर्युक्त एक समय मात्र काल पाया जाता है। एक समय कैसा घटित करना उसकी बात उन्होंने बताई। तथा दुर्भग अनादेय और नीच गोत्र की अनुत्कृष्ट स्थिति की उदीर्ण का वह एक समय रूप काल उत्तर शरीर की विक्रिया को प्राप्त हुए जीव के पाया जाता है। विशेष इतना है कि त्रस नाम कर्म की अनुत्कृष्ट स्थिति की उदीर्ण का काल जघन्य से अंतर्मुहूर्त है। उत्कर्ष से अनुत्कृष्ट स्थिति उदीर्ण का काल उपघात नाम कर्म का अंगुल के असंख्यात विभाग, ये उपघात का उदय कब शुरू होता है, नहीं विग्रह गति के बाद, इसलिए अंगुल का असंख्या का भाग है ना, तो अनाहारक होने रहने का काल लेना इसमें। विग्रह गति में उपघात का उदय नहीं है, वो बंद है ध्रुवबंदी है, परंतु उदय उसका विग्रह गति में, अभी हमने देखा था ना विग्रह गति में 21 का है और वहां जाने पर 24 का होता है, तो उसमें उपघात का भी शुरू होता है, उसमें शरीर नाम कर्म है, जैसे औदारिक शरीर नाम कर्म है, एक इंद्रियों में क्या औदारिक शरीर नाम कर्म है, एक संस्थान है, एक ही उपघात है, ऐसे वहां जाके शुरू हो जाते हैं। ये प्रत्येक शरीर या साधारण शरीर उसका भी शुरू हो जाता है, यानी कि एक औदारिक शरीर नाम कर्म है, वो प्रत्येक या साधारण उसकी बात है, एक उपघात है और एक संस्थान है, तो चार का उदय चालू हो जाता है। और जो मनुष्य धीरेंज है उसमें सहनन भी है और अंगोपांग भी है, इसलिए छह शुरू हो जाते हैं। देखो यहाँ क्या कहा, उपघात नामकर्म की बात चल रही, अंगुल के असंख्या भाग, परघात उच्छ्वास अप्रशस्त विहार गति और दुस्वर का कुछ कम 33 सागरोपम। अभी इसको क्यों कुछ कम लिया, ये दुस्वर अप्रशस्त विहार गति किसकी अपेक्षा से लेना, 33 सागरोपम नरक की अपेक्षा है। तो उसका उदय कब शुरू हो जाता है, देखो परघात का शरीर पर्याप्ति पूरी होने परघात और विहाय गति और उच्छ्वास पर्याप्ति पूरी होने पर उच्छ्वास और भाषा पर्याप्ति पूरी होने पर दुस्वर, इसलिए कुछ कम 33 सागरोपम कहा। उद्योत नाम कर्म का कुछ कम 3 पल्योपम, उद्योत का कब, शरीर पर्याप्ति पूरी होने पर उद्योत नाम कर्म का उदय चालू हो जाता है। और ये भूमि वाला लिया 3 पल्योपम वाला तिर्यंश, तिर्यंश लेना कि मनुष्य लेना, त्रस नाम कर्म का साधिक 2000 सागरोपम, ये त्रस की उत्कृष्ट स्थिति है साधिक 2000। प्रत्येक शरीर नाम कर्म का अंगुल के असंख्यात विभाग, इसमें भी यही बात समझना, ये प्रत्येक या साधारण शरीर नाम कर्म का उदय जहां जन्म लेना है वह आहार होने के पहले समय से होता है, तो रुजु गति से जाने वाले का इसका उदय चालू रहेगा, इसलिए उसको लिया। तथा दुर्भग अनादि और नीच गोत्र का असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है, वहां तो अंगुल का असंख्यात का भाग लिया और दुर्भग अनादि और नीच गोत्र को असंख्यात पुद्गल परावर्तन, ऐसा क्यों, उसका निग्रह गति में भी इसका उदय है और असंख्यात पुद्गल परावर्तन क्यों लिया, क्योंकि एकेंद्रियों में तो इनका ही उदय होता है, ये ऑप्शनल नहीं है। एकेंद्रियों में यश कीर्ति और यश कीर्ति ऑप्शनल हो सकते हैं, परंतु ये दुर्भग अनादि वगैरह यही उनकी प्रकृतियों का उदय चलता है, इसलिए उसको ले लिया, उसको असंख्यात पुद्गल परावर्तन। अभी यहाँ आते हैं, आप क्या कहते हैं, एक इंद्रिय में प्रत्येक शरीर नाम कर्म का उदय है कि नहीं, परिणाम इन बोलो क्या कहते हैं, नहीं है, साधारण किसको होता है, निगोद अकेले को, निगोद को छोड़कर अन्य वनस्पति कायिकों को क्या होता है, प्रत्येक शरीर वायु कायिक अग्नि कायिक जल कायिक पृथ्वी का एक, ये सारे ही प्रत्येक शरीर नाम कर्म वाले,
तो यहाँ पे अंगुल के असंख्यात काल करता है उसमें ये निगोद छोड़कर,
हाँ निगोद को छोड़कर अन्य सभी लेना, पांचों प्रत्येक शरीर वनस्पति भी है ना वहाँ, उसमें रहने का काल समझना,
सूक्ष्म बादल लेंगे तो 10 होंगे,
पांच यानी 5 सावर लेना है, निगोद को छोड़कर बाकी सभी लेना, सूक्ष्म बादल सब ले सकते
हैं,
हाँ वो सब का आहार अपने रहने का काल चाहिए, अंगुल का असंख्या तो भाग वाले लगातार आहार अपने रहने का काल, आज तक सूक्ष्म अपर्याप्त और साधारण नाम कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा का काल जघन्य से वो उत्कर्ष से एक समय, ना 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 विग्रह गति में नहीं है, शरीर संबंधी है ना, प्रत्येक शरीर नाम कर्म का उदय नहीं है, नहीं वो पहले समय में होता है, तो हमने क्या देखा था औदारिक शरीर नाम कर्म प्रत्येक या साधारण जो कुछ है उसका ना, फिर संस्थान एक होता है और कौन सा एक चौथा बताया था ना, एक औदारिक शरीर, एक संस्थान, एक प्रत्यक्ष शरीर, सनन तो इंद्रिया से होगा, एक इंद्रियों को भी चार, हाँ उपगत उपगत, ये चार का उदय चालू हो जाता है पहले समय से, विग्रह गति में नहीं था उदय, यहाँ चालू हो जाता है, वहां पहुंचते ही चालू होता है। ये पहले भाग में कभी ये प्रश्न भी आया था कि साधारण शरीर नाम कर्म का उदय नहीं है, फिर भी उनको साधारण क्यों कहते हैं ऐसे कुछ, क्योंकि वो बांधा है ना और उसका उदय होने वाला है, विग्रह गति में उसको साधारण जीव ही कहेंगे, वो तो निगोज जीव ही कहेंगे उसको। हाँ देखो, चौदहवें गुण स्थान में भी त्रस बादर पर्याप्त का उदय है और प्रत्येक शरीर का उदय कम भी तेरहवें में मिट जाता है, संयोग केवली अवस्था में मिट जाता है, क्योंकि प्रत्येक शरीर का उदय हो तो उस जाति के परमाणु का भी ग्रहण होता है, मिला है ना आपके, हाँ दिस देखी है कि नहीं उसमें लास्ट में है प्रत्येक शरीर लास्ट में तो कहाँ है वो भी मैं बता दूँ आपको तो आतप सूक्ष्म अपर्याप्त और साधारण नामकर्मों की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा का काल जगन्य व उत्कर्ष से एक समय है, उनमें अनुत्कृष्ट स्थिति की उदीर्णा का काल आतप नाम कर्म का जगन्य से अंतर्मुहूर्त और उत्कर्ष से कुछ कम 22,000 वर्ष प्रमाणे। जगन्य से अंतर्मुहूर्त कैसा लेना है, जगन्य आयु लेना, पर्याप्त की जगन्य आयु, पर्याप्त पृथ्वी का एक आतप लिया ना, आतप में तो पर्याप्त लेना, पृथ्वी का एक पर्याप्त की जगन्य आयु कितनी अंतर्मुहूर्त, और पृथ्वी का एक की मैक्सिमम आयु है ये तो 22,000 वर्ष, ये यहाँ लिए। सूक्ष्म अपर्याप्त व साधारण नाम कर्मों की अनुत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा का काल जगन्य से अंतर्मुहूर्त है, क्योंकि उनकी जो आयु है वो अंतर्मुहूर्त है, सूक्ष्म की अपर्याप्त की साधारण। उत्कर्ष उत्कृष्ट से उत्कृष्ट से ऐसा हो गया, उत्कर्ष से चाहिए क्रु निकाल लेना, उत्कर्ष से वह सूक्ष्म नाम कर्म का असंख्यात लोक, ये याद है सूक्ष्म में लगातार पर्याप्त में रहने का काल और लगातार अपर्याप्त में रहने का काल कितना है, अंतर्मन, और लगातार सूक्ष्म में रहने का काल असंख्यात लोक, समझ में आता है, कभी पर्याप्त कभी अपर्याप्त कभी, परंतु सूक्ष्म का सूक्ष्म ही रहे तो असंख्यात लोक। देखो ये भी क्षेत्र में काल बताया है, अंगुल के असंख्यात विभाग में असंख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी होती, तो ये असंख्यात लोक में क्या होगा वो इमेजिन करना। अपर्याप्त नाम कर्म का अंतर्मुहूर्त लिखा ना यहाँ, तथा यानी अपर्याप्त में वो सूक्ष्म बाधा दोनों के अपर्याप्त है, साधारण शरीर नाम कर्म का अंगुल के असंख्यात विभाग है, क्योंकि साधारण शरीर नाम कर्म का उदय है वो भी लगातार होना चाहिए, आहारक बने रहने का काल लिया, अकेले निगोद में रहने का काल नहीं लिया, लगातार निगोद में रहने का काल तो बहुत बड़ा है, जैसे कोई तो नित्य निगोद में तो अनादि से है वो तो अनंत काल तक रहेगा, और इतर निगोद में रहने का काल ढाई पुत्र, असंख्या पुद्गल परावर्तन सभी एक इंद्रियों में मिलकर रहने का काल, और अन्य पर्याय में से निगोद में गया वहां रहने का उत्कृष्ट काल ढाई पुद्गल परावर्तन, परंतु उसको यहां नहीं दिया, वो तो अनंत काल है और ये असंख्यात काल है। प्रशस्त विहाय गति यश कीर्ति सुभग व आनय नाम कर्मों की तथा उच्च गोत्र इन कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा का काल जगन्य से एक समय और उत्कर्ष से एक अवली मात्र है। अनुत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा का काल प्रशस्त व्यागति यश कीर्ति सुभग और आदेय नाम कर्मों का जघन्य से एक समय है। आप ही बताओ जघन्य से एक समय कब होगा? देखो जघन्य एक समय होता है, जघन्य स्थिति उदीर्ण कब होती है, कब होगी? नहीं आवली नहीं लगाना है, ये सब संयोग केवली के अंतिम समय में उदीर्ण मिट जाती है, उसका उदय भले बाद में हो। तो अंतिम समय में तो एक स्थिति उदीर्ण हो गई और लास्ट बट वन समय में अनुत्कृष्ट होगी ना, उसकी अनुत्कृष्ट में जघन्य हो जाएगी उसकी, वो एक समय घटित होगा या कहीं बीच में भी हो सकता है, अनुत्कृष्ट से उत्कृष्ट हो जाएगी तो भी एक समय घटित हो जाता है और उत्कर्ष से वह प्रशस्त विहायवति का कुछ कम 33 सागरोपम तथा यश कीर्ति सुभग और आदि नाम कर्मों का सागरोपम शतपृथक्त्व मात्र है। विहायगति का जो उदय है वो कब शुरू हो जाता है? शरीर पर्याप्ति पूरी होने पर, इसलिए उसको एक ही भव में घटित करना चाहिए। तो यहाँ कौन से भव में घटित किया? 33 सागरोपम नरगति में लेना के नहीं, प्रशस्त है नहीं तो देवगति में करना, और यश कीर्ति सुभग और आदे नाम कर्मों का सागरोपम शतपृथक्त्व मात्र है। क्योंकि ये जो प्रकृतियां हैं उसका विग्रह गति में भी उदय पाया जाता है, विहाय गति का उदय विग्रह गति में नहीं होता। शरीर पर्याप्ति पूरी होने पर ही, मान लेते आहारक पने से भी गया तो भी जो मिश्र काल जो है मिश्र अवस्था में उसका उदय नहीं पाया जाता। एक अंतर्मूर्त है ना, आहार पर्याप्ति पूरी होती है फिर शरीर पर्याप्ति पूरी होती है, तो दो पर्याप्ति तक इसका उदय नहीं है, बाद में उदय होता है। यानी रुजुगति से जाने वाले के भी बीच में तो गैप पड़ेगी ही विहाय गति में, परंतु जो ये जो बाकी जो ना यश कीर्ति है सुभग है आदेय इनका उदय तो विग्रह गति में भी होता है। तो लगातार इनका उदय चल रहा है, उदीर्णा की बात चल रही है अपनी, तो अनेक भवन तक चलती रहेगी, इसलिए उसको सागरोपम शतपृथक् बोलते हैं। उच्च गोत्र की अनुत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से सागरोपम शतपृथक् प्रमाण है। गोत्र कर्म का भी उदय लगातार चालू रहता है, विग्रह गति में भी होता है। स्थावर नाम कर्म की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से एक आवली है। उसकी अनुत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से असंख्यात पुद्गल परिवर्तन मात्र है। एकेंद्रिय में रहने का उत्कृष्ट काल है इसमें। ये स्थावर नाम कर्म का उदय विग्रह गति में भी होता है, द्रस्य स्थावर उसमें होता है ना, पर्याप्त या अपर्याप्त उनका तो उदय वहां से विग्रह गति से ही शुरू हो जाता है। बादर और पर्याप्त नाम कर्म की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से अंतर्मूर्त मात्र है, और इनकी अनुत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा का काल जघन्य से अंतर्मूर्त मात्र है, तथा उत्कर्ष से वह बादर नाम कर्म का अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण और पर्याप्त नाम कर्म का 2000 सागरोपम है। यानी बादर 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 में रहने का अंगुल का असंख्यात विभाग प्रमाण काल है। हमने सूक्ष्म में रहने का काल कितना देखा था अभी अभी, लगातार सूक्ष्म हाँ असंख्यात लोग बरोबर, और लगातार बादर में रहने का काल अभी पढ़ा, वो अंगुल के असंख्यात विभाग। स्थिर और शुभ नाम कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्ण का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से आवली प्रमाण है। उनकी अनुत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा का काल जघन्य से एक समय है और उत्कर्ष से असंख्यात खुदगल परिवर्तन रूप अनंत काल है। स्थिर और शुभ, देखो ये क्या है, स्थिर अस्थिर और शुभ अशुभ, ये तो नित्य उदय रूप प्रकृतियां हैं। बंधने में भले वो स्थिर या अस्थिर, शुभ या अशुभ बंधेगी, परंतु उदय तो लगातार चलता रहता है
दोनों का,
दोनों का। इसलिए एक इंद्रिय असंख्या पुद्गल परिवर्तन लिया ना, एक इंद्रियों में भी है वो। अस्थिर और अशुभ का भी उतना ही होगा। आगे कहाँ लिखा है, अस्थिर अशुभ आए ही ना आगे बात, स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ वह जगन्य स्थिति उदीर्णा को लिया, आगे लिया है अजगन्य में लिया है। अच्छा अभी हम यहाँ पढ़ते हैं 125 पर आते हैं हम, नीचे से तीसरी लाइन वो पैराग्राफ की, तीर्थंकर प्रकृति की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा का काल जगन्य व उत्कर्ष से एक समय है, क्योंकि उसके जब उदीर्णा चालू हो जाती है, पहले समय उदय है और उसी समय उदीर्णा चलती है, तो एक निशे गलने के बाद वो अनुत्कृष्ट होने वाली है, उत्कृष्ट तो एक ही समय रहेगी, उसकी अनुत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा का काल जघन्य से वर्ष पृथक हो, अनुत्कृष्ट की होती रहे लगातार पृथक वर्ष, जो तीर्थंकर प्रकृति के उदय का जो मिनिमम काल है वर्ष पृथक हो, इतने साल तो तीर्थंकर पने रहेंगे ही, और उत्कर्ष से कुछ कम पूर्व कोटि मात्र है। ये कुछ कम में क्या कम करना है, पहले 8 साल और बाद में एक अंतर्मूल, वहां भी तीर्थंकर प्रकृति का उदय है परंतु उदीर्णा रुक जाती है, उदीर्णा तो 13वें के अंत तक ही होगी। इस प्रकार उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा का काल समाप्त हुआ, जघन्य स्थिति उदीर्णा के काल की प्ररूपणा की जाती है, वह इस प्रकार है, 5 ज्ञानावरण 4 दर्शनावरण 7 असाता वेदनीय सम्यक व मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व। ये जो सारे ना जघन्य स्थिति उदीर्णा है ना, क्या है, एक ही स्थिति की उदीर्णा होगी, तो बहुत सारी एक ही समय में होगी ना, जो अंतिम समय जो हम कहते हैं उस समय उसकी जघन्य स्थिति उदीर्णा होगी। तो ये कौन कौन सी प्रकृति है उसकी लिस्ट अभी बताए, ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय सबको लिए ना, ये साता साता वेदनीय सम्यक्त्व मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व 4 संजोलन 3 वेद हास्य रति अरति शो 4 गतियां 5 जातियां 5 शरीर 3 अंगों का 5 शरीर बंधन 5 संघात 6 संस्थान 6 सहनन वर्ण गंध रस स्पर्श 4 अनुपूर्वी अगुरु लघु उपघात परघात उच्छ्वास प्रशस्त अप्रशस्त व्यायगति रस स्थावर मादर सूक्ष्म पर्याप्त पर्याप्त प्रत्येक व साधारण शरीर स्थिर आदि 6 युगल यानी स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ शुभ दुर्बल नहीं स्थिर शुभ सुभग सुस्वर आदेव और यश कीर्ति तीर्थंकर निर्माण उच्च गोत्र नीच गोत्र और 5 अंतराय तथा 4 आयु कर्म इनकी जघन्य स्थिति उदीर्णा का काल जघन्य व उत्कर्ष से एक समय है, यानी वो जघन्य स्थिति की उदीर्णा एक समय मात्र होगी और लगातार लगातार नहीं एक ही समय के लिए होगी। लगातार कैसे होगी, 2 समय तक नहीं हो सकता, क्योंकि उसका वो अंतिम समय को ही तभी एक स्थिति की उदीर्णा होगी ना, तभी हमने उसको जघन्य कहा था। अब अजघन्य में हो लगातार कितने काल तक कह सकते, अजघन्य स्थिति उदीर्णा का काल 5 ज्ञानावरणीय 4 दर्शनावरणीय 5 अंतराय तेजस्व कर्मण शरीर वर्णाधिक 4, ये वर्णाधिक के बाद में कॉमा नहीं चाहिए, वर्णाधिक 4 स्थिर स्थिर शुभ अशुभ अगुरु लघु और निर्माण नाम कर्म का अनादि अपर्यवसित यानी क्या, अनादि अनंत, पर्यवसान यानी अंत, उसका अवसान हो गया कि नहीं, पर्यवसान अपर्यवसान यानी अनादि अनंत, और अनादि सपर्यवसित है यानी अनादि शांत है। अनंत और अनादि शांत है, ये पांच ज्ञानावरणी का अनादि अनंत यानी वो तो अगर नहीं चलेगा चपुखिरणी तो अनादि अनंत चलता रहेगा उसका। साता व असाता वेदनीय की अजगन्य स्थिति उदीर्णा का काल, जगन्य से एक समय है, उत्कर्ष से वह साता वेदनीय का छह मास और असाता वेदनीय का अंतर्मूल से अधिक 33 सागरगुण प्रमाण है। जैसे हमने अनुत्कृष्ट में देखा वैसे अजगन्य का है, उत्कृष्ट में एक समय बिताकर बाकी अनुत्कृष्ट होता है और ये जगन्य छोड़कर अजगन्य होता है। सब मिथ्यात्व की अजगन्य स्थिति उदीर्णा के काल के अनादि अपर्यवसित, अनादि सपर्यवसित और सादि सपर्यवसित, ये तीन बंग है यानी अनादि अनंत, अनादि शांत और सादि शांत। इनमें जो सादि सपर्यवसित है उसका प्रमाण जगन्य से अंतर्मूर्त और उत्कर्ष से उपार्ध पुद्गल परिवर्तन है, उपार्ध ने कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन का यानी वो सादी सादी मिथ्या दृष्टि है ना, ये एक बार समय को प्राप्त किया है तो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक मिथ्या तो में रहेगा। चार संज्वलन कषायों की अजगन्य स्थिति उदीर्णा का काल, जगन्य से एक समय और उत्कर्ष से अंतर्मूर्त मात्र है। हास्य रति अरति और शोक की अजगन्य स्थिति उदीर्णा का काल जगन्य से एक समय है, उत्कर्ष से वह हास्य व रति का छह मास तथा अरति व शोक का साधिक 33 सागरों पर प्रमाण है। जैसे हमने उसको देखा था अनुत्कृष्ट में वैसे यहाँ पर अजगन्य में भी बहुत सारी बातें मिलती है। स्त्री वेद की अजगन्य स्थिति उदीर्णा का काल जगन्य से एक समय और उत्कर्ष से पल्लोपम पृथक्व प्रमाण है, जो स्त्री वेद रूप से रहने का उत्कृष्ट काल है। उक्त काल पुरुष वेद का जगन्य से अंतर्मूर्त और उत्कर्ष से सागरोपम शतपृथक्व मात्र है। नपुसक वेद का उक्त काल जगन्य से एक समय और उत्कर्ष से असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है, जो एक इंद्रियों में रहने का उत्कृष्ट काल है नपुसक वेद का। सम्यक तो प्रकृति की अजगन्य स्थिति उदीर्णा का काल जगन्य से अंतर्मूर्त और उत्कर्ष से एक समय अधिक आवली से हीन 66 सागरोपम प्रमाण है। ये जो वेदक सम्यक्तों का काल है उसमें से वो एक समय अधिक आवली कम कर दिया उसमें से, क्योंकि जब एक समय अधिक आवली काल रहता है तो एक स्थिति वाला जो जघन्य हो जाता है उसको छोड़ देना। सम्यक मिथ्यात्व की अजघन्य स्थिति उदीर्णा का काल जघन्य व उत्कर्ष से अंतर्मूर्त है। नारकायु की अजघन्य स्थिति उदीर्णा का काल जघन्य से एक समय अधिक आवली से हीन 10,000 वर्ष और उत्कर्ष से एक समय अधिक आवली से हीन 33 सागरोपम प्रमाण है। देवायु की उक्त प्ररूपना नारकायु के समान है। मनुष्यायु की अजगन्य स्थिति उदीर्णा का काल जगन्य से एक समय और उत्कर्ष से एक समय अधिक आवली से हीन 3 पल्लोपम प्रमाण है। तिर्यंचायु की अजगन्य स्थिति उदीर्णा का काल जगन्यता एक समय अधिक आवली से हीन क्षुद्र ग्रहण, यह भी वही बात है, मनुष्य में वह एक समय ही ले लिया है। और उत्कर्ष में एक समय अधिक आवली से हीन 3 पल्लोपम प्रमाण है। यह मनुष्य में क्षुद्र ग्रहण वाला नहीं लिया, वह जगन्य स्थिति उदीर्णा का काल। वही नहीं स्पष्ट रूप से लिखा है 120 पृष्ठ पर, मैंने उसमें भी वो पृष्ठ 127
जो हमने आवलिकम लिखा था वो गलत है इसका।
हाँ ये खास एक समय लिखते हैं, एक समय पृष्ठ 120, इसलिए पेंसिल से करने को बोला था ना। प्रश्न चिन्ह तभी यानी समझ में आने के लिए प्रश्न चिन्ह तो रहता ही है। स्वामित्व में कुछ लिखा नहीं था ना उसमें, आयु के नहीं, कदली घात भी अगर लेते हैं तो दोनों में होना चाहिए, मनुष्य और तिरिंज दोनों में। 102 पर उत्कृष्ट है और जघन्य है वो 106 पर है। उत्कृष्ट स्थिति का उदीरक कौन होता है, उसका स्वामित्व 106 पर है। वहां भी कुछ ऐसा लिखा नहीं, अपने अपने इतना ही लिखा। इन्हें प्रश्न तभी कायम रहता ही है, क्यों लिखा एक समय। आगे कहीं आएगा उत्तर शायद उसका, अभी आगे पढ़ेंगे। नरक गति और देवगति नाम कर्मों की अजघन्य स्थिति की उदीर्णा का काल जघन्य से 10,000 वर्ष और उत्कर्षता 33 सागरों को प्रमाण है। तिर्यंच गति और मनुष्य गति नाम कर्मों की अजघन्य स्थिति उदीर्णा का काल जघन्य से क्षुद्र भव ग्रहण और उत्कर्ष से क्रमशः असंख्यात पुद्गल परिवर्तन तथा ये तिर्यंच के लिए, तिर्यंच गति नाम कर्म के लिए और मनुष्य गति नाम कर्म के लिए पूर्व कोटि पृथक्त्व से अधिक 3 पल्योपम प्रमाण है। ये लगातार मनुष्य में रहने का काल, वहां कोई आहार करने की जरूरत नहीं है क्योंकि गति नाम कर्म का उदय तो विग्रह गति में भी होता है। एकेंद्रिय जाति नाम कर्म की अजघन्य स्थिति उदीर्णा का काल जघन्य से क्षुद्र भव ग्रहण हुआ है, ग्रहण और उत्कर्ष से असंख्यात लोक प्रमाण है। इसके लिए एकेंद्रिय जाति द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुर्द्रिय और पंचेंद्रिय जाति नाम कर्मों की अजघन्य स्थिति उदीर्णा का काल जघन्य से अंतर्मूल और उत्कर्ष से संख्यात 1,000 वर्ष प्रमाण है। विशेष इतना है, पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म की उक्त उदीर्णा का काल उत्कर्ष से संख्यात सागरोपम प्रमाण है। पंचेंद्रिय में लगातार रहने का कारण औदारिक शरीर नाम कर्म की अजघन्य स्थिति उदीर्णा का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से अंगुल के असंख्यात हुए भाग मात्र है। हमने देखा था ना वो आहारक पने रहने का काल, यानी वो मोड़ वाली गति नहीं आती, बीच में रुजु गति से जाता है उसको लेना। वैकिरिक शरीर नाम कर्मों की अजघन्य स्थिति उदीर्णा का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से साधिक 33 सागरोपम प्रमाण है। वो विक्रिया वाला लेना उसमें, या विक्रिया में मरकर उसमें देव में गए वो भी ले सकते हैं। आहार शरीर नाम कर्म की और जघन्य स्थिति उदीर्णा का काल, जघन्य व उत्कर्ष से अंतर्मूर्त मात्र। तीन अंगोपांग नाम कर्मों की अजघन्य स्थिति उदीर्णा का काल उनकी अनुत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा के काल के समान है। मैंने आरंभ में तो अंतर्मूर्त हो जाएगी और बाद अपने अपने औदारिक के जो अंगोपांग औदारिक शरीर है उसका अंगोपांग वैसा ही लेगा। पांच संघातों और पांच बंधनों की अजघन्य स्थिति उदीर्णा का काल अपने अपने शरीर नाम कर्म के समान है। समचतुरस्थ संस्थान नाम कर्म की अजघन्य स्थिति की उदीर्णा का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से साधिक 163 सागरोपम प्रमाण है, जो अभी हमने पढ़ा था इसको। कुंडक संस्थान नाम कर्म की अजघन्य स्थिति उदीर्णा का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण है, क्योंकि संस्थान में वो आहारक पने रहने का काल ले लिया मुंडक संस्थान। शेष संस्थानों की अजघन्य स्थिति उदीर्णा का काल जघन्य एक समय और उत्कर्ष से पूर्व कोटि पृथक तो प्रमाण है। वज्र ऋषभ वज्र नाराज सहनन नाम कर्म की अजघन्य स्थिति उदीर्णा का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से पूर्व कोटि पृथक से अधिक तीन पल्लोपम प्रमाण है। जैसे हमने वो अनुत्कृष्ट में देखा वैसे ही लेना है। शेष सहननों की अजघन्य स्थिति उदीर्णा का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से पूर्व कोटि पृथक प्रमाण है। नरक गति प्राज्ञान पूर्वी देवगति प्राज्ञान पूर्वी और मनुष्य गति प्राज्ञान पूर्वी नाम कर्मों की अजघन्य स्थिति उदीर्णा का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से दो समय प्रमाण है। हाँ, ये तीन लेना और तिर्यक के लिए तीन समय लेना। तिर्यक गति प्राज्ञान पूर्वी नाम कर्म की अजघन्य स्थिति उदीर्णा के काल की भी प्ररूपना इसी प्रकार है, विशेष इतना है कि उसका उत्कृष्ट काल तीन समय प्रमाण है। ये ऐसी बात वहाँ अनुत्कृष्ट में ली थी ना हमने, वहाँ तीन अनुपूर्वी लिखा था। ये तीन है मनुष्य देव और नर की। और तिर्यक की अलग से बात की थी, वैसे यहाँ पर लेना। तिर्यक गति प्रायज्ञान पूर्व 129 पेज 129 जहां हम पढ़ रहे थे। तिर्यक गति प्राज्ञान पूरी नाम कर्म की अजघन्य स्थिति उदीर्णा के काल की भी प्ररूपना इसी प्रकार है, उसमें क्या विशेषता है, उसका उत्कृष्ट काल तीन समय प्रमाण। वो सूक्ष्म एक केंद्रीय में होता है ना, तीन मोड वाला। उपघात नाम कर्म की अजघन्य स्थिति की उदीर्णा का काल जघन्य से अंतर्मूर्त और उत्कर्ष से अंगुल के असंख्यात भाग मात्र है। ये लगातार आहारक रहने का काल। परघात नाम कर्म की अजघन्य स्थिति उदीर्णा का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से कुछ कम 33 सागरोपम प्रमाण है। कुछ कम में कितना कम करना है? मिश्र अवस्था है ना, अपर्याप्त अवस्था, आहार और शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने तक का जो काल, बाद में परघात का उदय चालू हुआ। कुछ अजघन्य की बात है ना, बीच में अजघन्य होगा फिर जघन्य हो, ये उत्कृष्ट हो जाएगा, ये जघन्य हो जाएगा, उसको लेना। जैसे बंदी थी उस प्रमाण में हो सकते हैं उसके लिए। अन्य से वो अजघन्य हो जाएगा उसको ले। यह जघन्य जब रहती है दो समय रहेगी तो एक समय वो बाद में मरण हो जाएगा ना, या बाद में जघन्य हो जाएगी और मर जाएगा, तो उसको अजघन्य उस वहां पर ले सकते हो। नहीं समझे? परघात का उदय कब तक होगा? मरण के समय तक, बाद में विग्रह गति में उदय मिट जाएगा। यानी उसकी जघन्य उदीर्ण कब होगी? लास्ट समय में होगी समझो, और उसका एक समय पहले अजघन्य होगी, तो उसको एक समय घटित होगा ना अजघन्य।
तो चलती रहेगी ना उसके पहले,
अच्छा उसके पहले चल रही थी इसकी बात, तो ऐसा लेना ना कि
उत्कृष्ट हो जाए,
उत्कृष्ट से और जघन्य हो जाएगी यानी अनुत्कृष्ट हो जाएगी फिर उत्कृष्ट हो जाएगी, जो अनुत्कृष्ट में भी एक समय घटित किया था ऐसे ही इसमें देना, अनुत्कृष्ट कहो या अजघन्य कहो उसको एक ही बात है वैसे। हाँ हाँ दो बात है, जघन्य की तरफ या अजघन्य में से अनुत्कृष्ट हो जाए फिर अजघन्य हो जाए, मध्य मध्य जो भेद है ना उसके दो बात थी, उत्कृष्ट की तरफ वो अनुत्कृष्ट और जघन्य की तरफ वो अजघन्य, तो अजघन्य में से अनुत्कृष्ट हो जाए फिर अजघन्य हो जाए, अनुत्कृष्ट था एक समय के लिए अजघन्य हुआ और फिर अनुत्कृष्ट हुआ, यानी अभी हम इमेजिन ही कर सकते ना उसको, ये लगातार रहने का काल लेना है। उच्छ्वास प्रशस्त व अप्रशस्त विहगति सुस्वर दुस्वर इनकी अजघन्य स्थिति उदीरणा की प्ररूपना परघात नाम कर्म के समान है, क्योंकि ये भी अंतर्मुहूर्त के बाद यानी उसके जो पर्याप्ति विशिष्ट पूर्ण होने पर उसका उदय चालू हो जाता है। त्रस नाम कर्म की अजघन्य स्थिति उदीरणा का काल जघन्य से अंतर्मुहूर्त, यानी त्रस में एक भव किया उसने तो अंतर्मुहूर्त, और उत्कर्ष से साधिक 2000 सागरों प्रमाण है, त्रस की उत्कृष्ट स्थिति। त्रस नाम कर्म का उदय तो विग्रह गति में भी चलता है, स्थावर बादर सूक्ष्म पर्याप्त पर्याप्त प्रत्येक शरीर और साधारण शरीर नाम कर्मों की अजघन्य स्थिति उदीर्णा का काल जघन्य से अंतर्मुहूर्त मात्र है। उत्कर्ष से स्थावर नाम कर्म का असंख्यात लोक एक इंद्रिय में रहने का काल, बादर नाम कर्म का अंगुल के असंख्यात विभाग, सूक्ष्म नाम कर्म का असंख्यात लोक, पर्याप्त नाम कर्म का साधिक 2000 सागरूपम, अपर्याप्त नाम कर्म का अंतर्मूर्त तथा प्रत्येक व साधारण शरीर नाम कर्मों का उपर्युक्त काल अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण है दोनों को लिए, क्योंकि आहार पणे रहने का काल उसमें लिया, निबोध में रहने का काल नहीं लिया। यश कीर्ति शुभ और आदेय नाम कर्मों की अजघन्य स्थिति उदीर्णा का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से सागरोपम चतुर्पतक का प्रमाण है, ये हमने देखा था कि मनुष्य और देव में चलता रहेगा। अयश कीर्ति दुर्भोग और अनादेय नाम कर्मों की अजघन्य स्थिति उदीर्णा का काल जघन्य से एक समय है, उक्त काल उत्कर्ष से अयश कीर्ति का असंख्यात लोक तथा शेष दो का असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। यानी सूक्ष्म में अयश कीर्ति है और बाकी एक इंद्रियों में वो तो चेंजेबल है, वो भी उसको असंख्यात पुद्गल परिवर्तन। तीर्थंकर नाम कर्म की अजघन्य स्थिति की उदीर्णा का काल जघन्य से वर्ष पृथक उत्कर्ष से कुछ कम पूर्व कोटि मात्र है। मीज गोत्र की अजघन्य स्थिति उदीर्णा का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है, ये तीर्यंज गति है ना नीच गोत्र है। उच्च गोत्र की अजघन्य स्थिति उदीर्णा का काल जघन्य से एक समय अथवा अंतर्मुहूर्त और उत्कर्ष से सागरोपम शत पृथक प्रमाण है, यही पर रुकते
हैं।
तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है तो
वहाँ पे तो बनता है,
यहाँ स्थिति की बात चल रही है कितने काल के कितने निषेक बंधे उसमें स्थिति कितनी पड़ी उसकी बात यहाँ पर चल रही है, उसकी अपेक्षा से यहाँ कम या ज्यादा है, इंटेंसिटी की अपेक्षा नहीं है यहाँ पर, वो अनुभाग की बात अलग है, यहाँ अनुभाग की बात नहीं हो रही। जवानी के ज्ञान सुझे लो कालो सोवानी हस्तकला। भवानी माता की जय।